आज ना आप लोग ना जो भी देख रहे हो एक को छोड़ के शायद आप लोग ना मुझसे नफरत करने वाले हो। एक तो इसलिए क्योंकि मैं जब हरे मिर्च तेजल पे बना रहा हूँ ये वाला पॉडकास्ट, और दूसरा इसलिए मुझे छाट फर्क नहीं पड़ता। चश्मा टूट गया है मेरे पास और कुछ नहीं है। आपको देखना है देखो, नहीं देखना है तो वैसे भी कौन देखेगा यार ये वाला तो। नहीं, कोई नहीं, शुरू करते हैं। यार मुझे कोई सरप्राइज तो नहीं, बट मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है। कभी कभी आप फिल्में देखते हो ना और आपको एक कैरेक्टर दिखता है और आप उसको, आपको लगता है कि आपने वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं देखा है, उसको आप पहचानते हो। तो शाहरुख का जो कैरेक्टर था हरिंदर सिंह नेहरा, उससे बहुत रिलेटेबिलिटी थी। वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो कि एक अनफेयर एडवांटेज है टू बी ऑनेस्ट। जनरली जब आप रोम कॉम्स देखते हो ना तो आपको कैरेक्टर्स पसंद आते हैं, आपको कैरेक्टर्स रिलेटेबल लगते हैं, आप उनके लिए इमोशंस फील करते हो, बेसिकली वो आपसे क्लिक कर जाते हैं, एज सिंपल एज दैट। और वो स्टोरी जो आप बात करते हो कि रोम कॉम की जनरली स्टोरी सिमिलर होती है, सेम होती है, वो बहुत फेयर क्रिटिसिज्म है। लेकिन क्योंकि वो कैरेक्टर रिलेटेबल हो जाता है और आप फिर एक पर्सनल लेवल पे उसकी स्टोरी पे देखते हो, तो ऊपर ऊपर से देखा जाए तो सबकी कहानी एक ही जैसी होती है, मोस्ट लोगों की कहानी। सब इतना अम्ब्रेला स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए मुझे, लेकिन जो चीज़ उसको स्पेशल बनाती है वो ये है कि वो उनके साथ खुद हुआ है, या वो उनके कुछ पर्सनली उनको अपील करती है। तो जो भी सक्सेसफुल रोम कॉम्स रही हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि जो आपका डायरेक्टर है उसने कैरेक्टर ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि ऑडियंस से वो कनेक्ट कर पाते हैं, ऑडियंस से वो इमोशंस, जैसे एम्पथी चाहिए कैरेक्टर्स के लिए, जैसे एम्ब्रेसमेंट चाहिए उन कैरेक्टर्स के लिए। जो डायरेक्टर्स होते हैं और जो स्क्रीन पे राइटर्स होते हैं वो सक्सेसफुली इन चीज़ों का ध्यान रख पाते हैं और इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए जो सबसे प्राइमरी चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं और आपको फिल्म की टोन एक तरह से रखनी होती है कि आप उन कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से कॉन्टेक्स्ट नहीं दे पाते हो उनके एक्शंस जस्टिफाई करने के लिए। इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस फिल्म में लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट नहीं था उन कैरेक्टर्स के लिए, ना हैरी के लिए ना सेजल के लिए। दोनों काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं बाय द वे। मेरे को एक अनफेयर एडवांटेज था कि जो कैरेक्टर था वो मुझे पहले ही रिलेटेबल लगने लगा था, स्पेशली शाहरुख खान का कैरेक्टर। और जो सेजल का कैरेक्टर था वो एक्चुअली एक तरीके से देखे तो वो गीत ही है, बट जिस गुजराती है और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एटलीस्ट ओवर आर्किंग पर्सनैलिटी अगर हम देखें तो मुझे वो दोनों कैरेक्टर ऐसे लगे कि मैं इनको जानता हूँ। और मेरे लिए फिर वो फिल्म ऑटोमेटिकली पर्सनल हो गई। बट मैंने जब वो फिल्म देखी और मैं निकला वहाँ से, मुझे अंदर ही अंदर कहीं लगा कि यार ये फिल्म सबको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उस फिल्म में कैरेक्टर अच्छे से डिफाइन किया ही नहीं गया। फिर मैंने ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स देखने का ट्राई किया फिर से फिल्म न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, जो कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए शाहरुख खान की फिल्म देखना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, बट मैंने किया अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ के साथ। तो मेरा ना एक एक काफ़ी टाइम से एक बहुत ही ओवर एम्बिशियस सा सपना रहा है कि कुछ फिल्में जो बहुत नेगेटिवली रिसीव हुई थी ऑडियंस ऑडियंस से, बट फिल्मों में बहुत पोटेंशियल था एटलीस्ट प्लॉट में उस फिल्म के. तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कभी लाइफ में कभी कुछ चांस मिले तो उन फिल्मों को वापस बनाऊं अपने हिसाब से और उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर सकूं, इंस्पिरेशन उनसे लूं और स्टोरी अपने थ्रू अपने स्टाइल से कंडक्ट करूं. उसमें ना काफ़ी टाइम तक बहुत अलग अलग फिल्मों की लिस्ट मैंने बना रखी थी. ये मैंने सोचा था कुछ 2013 के आसपास 2014 के आसपास. और उस फिल्म का सबसे लेटेस्ट एडिशन जो है वो जब हैरी मेट सेजल है अनफॉर्चुनेटली. और मेरे लिए वो अगर कभी चांस मिलता है कि कोई एक फिल्म मुझे फिर से बनानी है तो मैं यही वाली बनाऊंगा क्योंकि ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है. हम इस पॉडकास्ट में क्या करने वाले हैं, हम लोग इस फिल्म को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे पूरे फिल्म को कैरेक्टर्स के थ्रू और हम लोग ये देखेंगे कि कुछ डिसीजंस अगर हम चेंज कर देते होपफुली उससे इस करंट फिल्म जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसका एक्सपीरियंस चेंज हो जाता. ज़रा हटके करने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे रिसीव होगा, वैसे कौन ही देखेगा जब हैरी मेट से चले यार टाइटल में, बट फिर भी मेरा मन है तो मैं कर रहा हूँ. मेरा प्लान ये था कि क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स थे हैरी और सेजल के ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे तो मैंने सोचा था कि क्यों ना ऐसा करें कि जब हैरी मेट सेजल के बदले तीन फिल्में बनाते हैं. पूरा सुन लो प्लीज. तो जब हैरी मेट सेजल के बदले तीन फिल्में बनाते हैं, एक जो हैरी की कैरेक्टर फिल्म होगी, दूसरी जो सेजल की कैरेक्टर फिल्म होगी और तीसरी बेसिकली जब हैरी मेट सेजल. अब आप ऑब्वियसली मार्केटिंग के हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से बना सकते हो. जैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि जब हैरी मेट सेजल को एक फुल फ्लेज फिल्म रखते हैं और दो 15-15 मिनट के शॉर्ट फिल्म बना देते हैं, एक हैरी के ऊपर एक सेजल के ऊपर. 15 मिनट बहुत होते हैं एक कैरेक्टर को कॉन्टेक्स्ट देने के लिए अगर आप चाहो तो, स्पेशली अगर वो कॉन्टेक्स्ट आगे जाके सिम्बियोटिक होने वाला है किसी और कैरेक्टर के साथ. फॉर इन दिस केस जब हैरी सेजल से मिलेगा, जब हैरी मेट सेजल में एक एक सीन में चूज करूंगा दोनों कैरेक्टर्स के लिए जो बहुत ही कंफ्यूज तरीके से रिसीव की गई थी. तो हम उन सीन्स को एनालाइज करेंगे, पहले हम देखेंगे उसमें कौन सा कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है. जो मैं बेसिकली उसमें कुछ एक इमेजिनरी कॉन्टेक्स्ट डालने वाला हूँ, मेन ये है. इसमें मुझे डिस्कशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये मैं डिल्यूजनल हो रहा हूँ बायस के अंदर या फिर एक्चुअली में मैं ढंग का क्रिटिसिज्म कर पा रहा हूँ यहाँ पे और ढंग का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर पा रहा हूँ. तो प्लीज़ यार, हाँ कॉमेंट्स में बताना, मैसेज कर देना प्लीज़. हाँ स्टार्टिंग में भीख मांग ली मैंने, शाबाश. बट ठीक है, तो हैरी के कैरेक्टर से शुरू करते हैं. जो अपने हैरी हैं मिस्टर हरिंदर सिंह नेहरा, उनका कैरेक्टर अगर मैं एक गाने के थ्रू बताऊं तो जो पहला गाना था ना फिल्म का सफ़र, बहुत अच्छे से उनका आर्क कवर करता है, एटलीस्ट प्रीसीडिंग आर्क जब हैरी मेट सेजल से पहले वाला.
जब से गांव से मैं शहर हुआ इतना कड़वा हो गया कि जहर हुआ, चाहता ये हो जाना मैंने, ये उम्र वक्त रास्ता गुजरता रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा.
इस फिल्म में इस कैरेक्टर ने बहुत आउटरेज दिखाया है एट टाइम्स, बहुत कॉमिकली भी. तो यार हैरी का अगर हम कैरेक्टर फिल्म डिस्क्राइब करने का सोचें क्या क्या हो सकता है उसमें, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली लैक किया था. कुछ सीन चुने हैं मैंने सीक्वेंशियली है मोस्टली आई थिंक. तो जो पहला वाला है वो बेसिकली तब होता है जब हैरी और सेजल भाग रहे होते हैं कुछ गुंडों से और सेजल जो है वो कुछ कहती है जो जिसके लिए हैरी बहुत अग्रेसिव हो जाता है वो सुनने के बाद.
इधर क्यों जा रहे हो?
क्या?
होटल तो वहाँ है ने?
मिस कर रही दोनों का? वापस बुलाऊंगे?
How you are talking?
How you are talking? तू तो practical होने का wait कर रही थी. practically क्या करती थी?
तू डरी हुई थी ना मैं? ऐसे कुछ भी थॉट आ रहे थे मेरे।
ऐसे थॉट आ कैसे सकते हैं तुझे? ऐसे थॉट आ कैसे सकते हैं?
तुमको क्या इतना हर्ट हो रहा है?
एग्जैक्टली एग्जैक्टली मुझे इतना हर्ट क्यों? तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। ऐसा दिन ना बुलाई मैं लड़ता ही।
अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा है, सेजल को भी नहीं समझ आ रहा है कि इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है। जब मैं ये सीन देख रहा था तो मेरे अंदर जो इमोशन आया वो ये था कि हैरी को ऐसा लग रहा है कि सेजल शायद उस पर उतना ट्रस्ट नहीं करती है कि वो उसे सिचुएशन से प्रोटेक्ट कर सकता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन है स्पेशली इस सिनेरियो में, क्योंकि जैसे डायरेक्टर ने दिखाया है इम्तियाज अली ने इस सीन में, वर्ड्स बहुत एम्बिगुअस हैं और आई थिंक उन्होंने सेजल का पर्सपेक्टिव ऑडियंस पे लाने का ट्राई किया है कन्फ्यूज्ड वाला। बट प्रॉब्लम इज कि आप हल्का सा भी हिंट दे देते ना तो उस इस मोमेंट को एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता, इस मोमेंट को एक वेट मिल जाता, और अगर इस मोमेंट को आप एक वेट दे देते तो इस रिलेशनशिप में एक चेक पॉइंट आपका बन जाता जहाँ पे पहली बार हैरी को उसकी रियलिटी फील हुई है। क्योंकि हैरी जो एक कैरेक्टर है वो बहुत इनसिक्योर है, वो प्रिटेंड करता है कि वो कोई और है, अपने एक्शंस ऐसे दिखाता है कि वो बहुत ब्रैश है, उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, वो बहुत केयरफ्री है, इन दैट सेंस वुमनाइजर है, ये है वो है, बट इन दी एंड वो बस एक शील्ड है अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए। ठीक है, तो अब इस सीन के बाद एक और सीन देखते हैं। जब फाइनली दोनों सीन देख लेंगे उसके बाद हम हैरी का जो कैरेक्टर फिल्म है उसको हल्का सा कंटेक्चुअलाइज करेंगे। कंसेप्चुलाइज करेंगे, सॉरी। तो जो दूसरा सीन है वो इमीडिएटली इसके बाद आता है जब वो स्टेयर केस से ऊपर जाते हैं और वो सो जाते हैं।
कोई नहीं राज्य, कोई नहीं, मैं जानता हूँ कोई भी होंगे, होता है कोई तू।
हाँ,
तो कभी पंजाब गई?
नहीं।
मैं वहां का हूं, छोटी जगह नूरमल, पिंड है मेरा। तुझे पता है पंजाबी सिंगर इतना जोर से क्यों गाते? ऊंची आवाज होती है ना, पता है क्यों? किसान होते हैं सारे, ट्रैक्टर चलाते हैं खेतों में और साथ गाने भी गाते हैं, तो अपनी आवाज सुनने के लिए ट्रैक्टर की आवाज से ऊपर गाना होता है।
ये सीन का रिसेप्शन कुछ खास नहीं था थिएटर में, इनफैक्ट लोग हंस रहे थे, और मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत अब्रप्टली आया था। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस सीन में जो हैरी है और जो वो चीज़ें बोल रहा है उन चीज़ों पर अगेन कोई वेट नहीं है, उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए। वो एक परहैप्स एक लाइन बोल रहा है जो उसकी माँ उसे बोलती होगी जब उसे कुछ प्रॉब्लम होती होगी, बट एक ऑडियंस को सिनेमा देखते हुए ये सोचना, ऐसी बैक स्टोरी अपने दिमाग में बना लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और कोई हिंट नहीं है इस पूरे सीन में। और इवेंचुअली इस जैसे ये सीन ख़त्म होता है उसका पर्सनैलिटी फिर से फ्लिप होता है और वो गाना गाने लगता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, जो कि मैं अग्री करता हूँ उससे, कि वो गाना इसलिए गाने लगता है उसे गांव की याद आ रही होती है, और गांव में वो क्या करता था, गाना गाता था, तो अपने आप को बस फ्री करने के लिए खुद को वो उस टाइम पे गाना गा रहा था। तो वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं थी, एक डिराइव्ड इमोशन था कहीं एक बैक एंड स्टोरी से जो हमें नहीं पता थी। अगेन कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, मैं पता नहीं कितनी बार कॉन्टेक्स्ट बोलूँगा इस पूरे पॉडकास्ट में, बट दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम वाज। अब हम एक काम करते हैं, अब हम वो कैरेक्टर फिल्म डिज़ाइन करते हैं अपने हिसाब से। तो हमें दो ब्लेयरिंग इमोशन दिखाने, एक कि हैरी जो है ही हैज़ एन इनसिक्योरिटी अबाउट पीपल नॉट ट्रस्टिंग हिम और पीपल दैट ही केयर्स अबाउट नॉट ट्रस्टिंग हिम। दूसरा जो मेजर इमोशन है वो घर से रिलेटेड है, क्योंकि ऑल्दो ये दोनों कैरेक्टर ही घर ढूंढ रहे हैं एक तरीके से. इस पे मैं एक्चुअली बाद में आऊँगा, बट शाहरुख इस मोमेंट पे अपनी घर की याद कर रहा है. तो हम अगर इतना भी कॉन्टेक्स्ट डाल दें कि वो जो लाइन वो बोलता है उस पे एक वेटेज आ जाए ताकि ऑडियंस एम्पथाइज कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं, जो कैरेक्टर फिल्म है उसमें दो सीन डिज़ाइन किए हैं मैंने, मुझे नहीं पता कितने इफेक्टिव है. जो घर वाला सीन है वो हम कुछ ऐसा देख सकते हैं कि छोटी एज में उसके साथ अगर कुछ भी बुरा होता था तो उसकी माँ उसको यही बोल के ऐसा भरोसा दिलाती थी कि सब ठीक हो जाएगा, और शायद इवेंचुअली कुछ हुआ उसकी लाइफ में जिसकी वजह से उसके घर से उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिला एक्सेप्ट उसके माँ के थ्रू. और जब वो शायद घर आना भी चाह रहा था तब भी उसकी माँ उसे शायद ये सेम चीज़ बोलती थी, लेकिन हैरी फिर भी घर नहीं आ पाया था. आप इतना भी कॉन्टेक्स्ट डाल दोगे ना इस कैरेक्टर पे, उस सीन में ऑटोमेटिकली एक वेट आ जाता है. और जो दूसरा सीन है वो तो बहुत सिंपल है यार, वो तो कितनी बार देखा है हमने. उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि एक बहुत होमली स्मॉल टाउन, या दूर महल वैसे गांव है बट फीलिंग के हिसाब से एक होमली स्मॉल टाउन रोमांस है. एक्चुअली आगे इस फिल्म में आगे बोलता भी है कि सिर्फ दो ही बार मिले थे वो अपने लव इंटरेस्ट से, कुलवंत कौर. ओल्ड स्कूल होमली स्मॉल टाउन रोमांस. हम उसमें एक सब प्लॉट ये डाल सकते हैं कि कैसे हैरी को सिंगर बनना था, हैरी को गाने गाने थे, उसकी फैमिली शायद उसके अगेंस्ट थी बट उसकी माँ उसके साथ थी. तो कुछ भी होता था तो उसकी माँ उसको ये बोलती थी जो इस सीन में बोला गया, कोई बात नहीं रान से सब ठीक हो जाना है. तो क्योंकि उसकी फैमिली अगेंस्ट थी तो उसने भागने का सोचा एक सिंगर बनने के लिए, और उसने शायद कुलवंत से भी पूछा कि क्या तू मेरे साथ भागेगी. और फिर उसके आगे और सब प्लॉट क्रिएट कर सकते थे और डेप डाल सकते थे चाहो तो. लेकिन अगर आपको एक 5-10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनानी है जिस मार्केटिंग पर्पस के लिए कि इस कैरेक्टर को एक इंट्रोडक्शन दे सके, तो मेरे ख्याल से इतना भी सब प्लॉट काफ़ी है. लोग इससे एम्पथी जनरेट कर सकते हैं इन सीन्स में जो मैंने आपको दिखाए थे. लोग समझ सकते हैं कि हैरी का जो आउटरेज है वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रहा है, क्यों वो इतने आइडियल रोमांस को ढूंढ रहा है जबकि उसके जो एक्शंस हैं वो एकदम अपोजिट है उसके, क्यों वो भाग रहा है इन सब से. उसकी इनसिक्योरिटी आप वहाँ पे डेवलप कर सकते थे. इन द एंड हैरी एक्सेप्टेंस चाहता है, हैरी एक घर चाहता है जहाँ वो सेफ फील कर सके, जहाँ वो वांटेड फील कर सके, एक्सेप्टेड फील कर सके. तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ इस लाइन पे सोचा उसका एक बैक स्टोरी टाइप से, जो कि मेरे लिए इन सीन्स को बहुत कॉन्टेक्स्ट देता है. एग्जैक्टली मैंने क्या सोचा था इस टाइम पे मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास जैसे मैंने बोला एक अनफेयर एडवांटेज था कि मुझे लगता था कि मैं इन कैरेक्टर्स को पहले से जानता हूँ, तो मेरे लिए ऑलरेडी एम्पैथी थी इन कैरेक्टर्स के लिए. तो अब आते हैं गीत के कैरेक्टर. बहुत ही अच्छी एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी बन सकती थी अगर आप पे गीत क्यों बोल रहा हूँ, सेजल, आई एम सॉरी. मेरा पॉइंट यही है कि गीत और सेजल सेम है, और अगर आप आज इम्तियाज अली गीत पे एक फिल्म बनाता है ना, सोलो फिल्म गीत की, तो लोग देखेंगे क्योंकि गीत इतना लवेबल कैरेक्टर है और सेजल वही है, बस उसका गुजराती वर्जन है. और क्या बाप वर्जन है उसकी. जो स्टोरी बन सकती है वो इतनी बेहतरीन कमिंग ऑफ एज स्टोरी बन सकती है दो पार्ट मिला के, मतलब उसकी कैरेक्टर फिल्म प्लस जब हैरी मटेरियल मिला के इतनी अच्छा उस स्टोरी का आर्क आ सकता है. उस कैरेक्टर में पहले हल्का सा डिफाइन करता हूँ, क्योंकि इस फिल्म में ना हम मोस्टली हैरी का पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं. सेजल का पर्सपेक्टिव उतना नहीं आता है. सेजल बहुत एस्पिरेशनल है, वो बहुत ही इनोसेंस एम्बॉडी करती है. इनसिक्योरिटी तो है ही, ये फिल्म दो इनसिक्योर लोगों के बारे में ही है एट इट्स हार्ट. इसका भी जो डिफेंस मैकेनिज्म है सेजल का वो भी बहुत सिमिलर है हैरी के, कि शी ऑल्सो पुट्स अप अ पर्सोना, एक फेक बना लेती है अपना कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं बहुत हार्डकोर हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है. बेसिकली शी इज़ वेरी कन्फाइंड एंड शी वॉन्ट्स टू बी फ्रीड, Maybe she wants to find herself. या कुछ और. शायद वो किसी और के थ्रू अपने आप को ढूंढना चाहती है. तो हम एक क्या करते हैं, हम एक सीन देखते हैं जिसने मुझे पर्सनली बहुत कंफ्यूज किया था. द सीन इज नॉट वेल एग्जीक्यूटेड. आई हैव टू एडमिट कि इस सीन की एडिटिंग, इस सीन का डायरेक्शन इज वेरी अब्रप्ट.
फॉलो किया आपने मुझे?
हाँ, मैं क्या करूंगी तुमको फॉलो.
वाओ, आप चलिए यहाँ से, आप यहाँ नहीं रह सकती.
क्यों नहीं रह सकती?
क्योंकि मैं कह रहा हूँ नहीं रह सकती, चलिए.
नो, दादागिरी मत करो. तुम यहाँ मेरे गाइड नहीं हो, हम रिंग नहीं ढूंढ रहे. तुम जाओ, तुमको जो करना है.
वेरी स्मार्ट, चलिए. ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, कम ऑन.
क्यों? मुझे तो लगता है ये बिल्कुल मेरे टाइप की जगह है.
आपके टाइप की जगह बिल्कुल नहीं.
तुमको क्या पता मैं किस टाइप की हूँ.
अच्छा, चीज है तू. मैंने कहा आप जो है ना मैम, आप एक्चुअली
तुम चालू हो गए. मेरे पे ट्राई मार रहे हो.
नहीं, बिल्कुल नहीं. नो,
क्यों क्यों नहीं? मैं सेक्सी नहीं हूँ.
नहीं, आई मीन नो.
नहीं, थोड़ी भी नहीं.
नहीं.
ओरा?
तू ना बहुत क्यूट है, मतलब स्वीट है तू. देख रहा हूं मैं कब से तू ये सेक्सी मूव्स कर रही है, लेकिन तुझे सूट ही नहीं करता. तू गंदगी के लिए नहीं बनी, तुझे गंदी नजर से देख ही नहीं सकते. पता कैसी है तू? जैसे वो अपना चाइना वास होता है ना, पोर्सलिन, डेलिकेट, ब्यूटीफुल, सामने रखो और बस देख दे रहा हूं. वैसी है तू.
मतलब बोरिंग हूँ मैं? बोरिंग, होट नहीं हूँ, यही ना?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने. मैंने कहा तू ब्यूटीफुल है, प्योर है,
स्वीट, नाइस, सिस्टर टाइप. सिस्टर भी तो ब्यूटीफुल हो सकती है. मतलब कि मैं स्वीट हूँ, सेक्सी नहीं, यही ना?
अरे ये चक्कर क्या है तुम लोगों का? जब मैं जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देने की भी कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हो कि उसे एज एन इंसल्ट कैसे ले लें.
ऑफकोर्स ये इंसल्ट है.
दिमाग खराब हो? इंसल्ट कैसे है? अगर मैं कह रहा हूँ कि गंदी नजर से तुझे देख ही नहीं सकते, इंसल्ट कैसे है?
ये मेरी पूरी बॉडी को इंसल्ट है.
हाउ?
बिकॉज मैं यहाँ पे इतना कुछ कर रही हूँ और तुम बोल रहे हो उल्लियो कुची को बेबी, ये सब मत करो. तुम मुझे टर्न ऑन नहीं करती, तुम इस लायक ही नहीं हो. और तुम्हारे जैसा वुमनाइजर आदमी अगर मुझसे अट्रैक्टेड नहीं है, तो मतलब मैं तो फिर एकदम ही.
यार ये सीन ना, मेरा पर्सनल टेक इस पे ऐसा है कि गीत इज स्टिल नॉट बीइंग हरसेल्फ. गीत इज स्टिल ट्राइंग टू पोर्ट्रे एन इमेज दैट शी हैज क्रिएटेड इन हर हेड, एंड शी जस्ट वांट्स एक्सेप्टेंस फॉर दैट. कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये मैं बहुत करता हूँ. आप बहुत जब इनसिक्योर होते हो ना अपने आप को लेके, यू नो द रियल सेल्फ दैट यू आर, तो आप एक फेक पर्सनालिटी डिफाइन कर देते हो अपने लिए और आप उस पर ही एक्ट करते रहते हो. उस फेक पर्सनालिटी के थ्रू ही आप दुनिया से डील करते हो. आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आप जो हो, आपको एक्सेप्टेंस शायद कभी मिली नहीं अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी के लिए, और रिजेक्शन उतना ही बुरा लगने लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो आप जो फेक पर्सनालिटी बनाते हो ना, तो वो इन अ वे डिस्पोजेबल होते हैं. और अगर उसका रिजेक्शन भी होता है ना, तो मैनेजेबल होता है. मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा नहीं लगता है, बुरा लगता है, बट इन अ वे वो मैनेजेबल होता है. लेकिन क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी असली पर्सनैलिटी पर वो रिजेक्शन शायद आप झेल नहीं पाओगे. एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है. तो ये जो सीन है, इसमें मुझे लगता है कि शी इज स्टिल पोर्ट्रेइंग अ फॉल्स पर्सनैलिटी, और वो ऐसा दिखाना चाह रही है कि वो ये है, वो है, बट असली में शायद वो कोई और है. असली में शायद उसे बस एक्सेप्टेंस चाहिए, तो हम अब जब इसका सेजल का बैक स्टोरी डिफाइन करेंगे या डिज़ाइन करेंगे तो उसको बहुत बहुत इनोसेंट फिल्म बना सकते हैं हम उसको एक ओवर अ फ्यू ईयर्स आर्किंग वाली एक स्टोरी बना सकते हैं जैसे कि स्कूल में से लेके प्रॉबेबली इस एज तक जब उसकी शादी सेट हुई थी हम दिखा सकते हैं कि कैसे शी वॉज ऑलवेज कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अर फैमिली कैसे शी वॉज ऑलवेज कन्फाइंड विद इन द प्रिंसिपल्स ऑफ अ फैमिली और वो कहीं ना कहीं रिप्रेशन एक इमोशन हो जाता है उसके थ्रू मे बी शी ट्राइड रीचिंग आउट मे बी शी ट्राइड कनेक्टिंग विद पीपल एंड इट डिड नॉट फॉल थ्रू एंड शी डेवलप दिस डिफेंस मैकेनिज्म ऑन दैट अकाउंट कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं फॉर हु शी इज़ एंड सडनली जब वो ये फॉल्स पर्सनैलिटी वाला ट्रेड स्टार्ट करती है अपना तो सडनली शी रियलाइज कि दिस डजेंट अफेक्ट हर एज बैडली एज एज द अदर रिजेक्शंस इफ शी गेट्स रिजेक्टेड प्रोबेबली शी कंटिन्यूज विद दैट और कहीं ना कहीं अपने आप को दबा के रखा है अपने आप को छुपा के रखा है कभी एक्सप्लोर ही नहीं करने दिया अपनी असली पर्सनैलिटी को उस रिजेक्शन के डर के थ्रू तो खुद को कभी समझ ही नहीं पाई और बट ये फेक पर्सनैलिटी का ना यार एक प्रॉब्लम होता है जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ फर्स्ट हैंड कि जो एक्सेप्टेंस है ना वो कभी फुलफिलिंग नहीं होता है इवन इफ पीपल एक्सेप्ट यू इट्स वेरी सुपरफिशियल आपको वो फुलफिलमेंट आती ही नहीं है और तभी शायद इट बिकम्स एन ऑब्सेशन तो ये बहुत ही एक नुआंस्ड कैरेक्टर आर्क वाली स्टोरी बन सकती थी जिसमें हम दिखा सकते थे कि सेजल इज एक्चुअली अ विक्टिम ऑफ द सोसाइटी शी इज़ अ प्रिजनर ऑफ हर सेल्फ और इस कॉन्टेक्स्ट के बाद अगर आप ये सीन देखोगे ना ऑटोमेटिकली एम्पैथी क्रिएट होती है यार ऑटोमेटिकली आप फील करते हो सेजल के लिए कि वो क्या कर रही है वो क्यों कर रही है जो बुरा वाला पार्ट है वो ये है कि जो डायलॉग्स थे जो लिखे गए थे और जैसे वो डिलीवर किए थे शाहरुख खान ने इस फिल्म में सॉरी इस सीन में वो बहुत ही मैकेनिकल थे तो इट काइंड ऑफ टुक अवे द नेचुरल पार्ट ऑफ द सीन तो ऐसा ना हमने क्या किया दो कैरेक्टर फिल्म्स बना दी बैक स्टोरी दी दोनों को और हमने इस फिल्म का परहैप्स फर्स्ट वन थर्ड या फर्स्ट हाफ इस बैक स्टोरीज को एक दूसरे के थ्रू रिवील करने का ट्राई किया रिवील एक दूसरे के थ्रू मतलब कि उनके साथ जो एक साथ कुछ इवेंट्स हुए कैसे उन्होंने रिएक्ट किया दैट कुड हैव बीन अ कॉल बैक टू दोज मोमेंट्स इन दोज प्रीवियस कैरेक्टर फिल्म्स एंड इन दैट सेंस दीज सीन्स जो मैंने आपको दिखाए थे उनके में एक वेट होता उनके में एक इमोशन जनरेटिंग पावर होता और लोग कनेक्ट करते इन कैरेक्टर्स से इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ और मैं एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ फर्स्ट हाफ क्योंकि जो सेकेंड हाफ है वो बहुत लॉस था बस इसी वजह से क्योंकि फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाए थे ढंग से वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कैसे वो एक दूसरे के इमोशंस कैसे इवोक कर रहे थे वो जस्टिफाइड नहीं बट ये मेरे स्किल सेट के हिसाब से शायद कोई ज़्यादा टैलेंटेड डायरेक्टर कुछ और क्रिएटिव तरीका ढूंढ सकता है इन्हीं ट्रेट्स को इसी फिल्म के अंदर डालने की हो सकता है कि अगर मैं शायद ये खुद लिख रहा होता शायद कुछ और तरीके से करता बट क्योंकि मेरे पास ये बेसिस है तो मुझे सबसे सूटेबल लगा वो यही था कि एक इसको ट्रियोलॉजी टाइप से बना दे मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा बट हम एक काम करते हैं अब हमने क्योंकि होपफुली इन मेरे नरेटेड सीन्स के थ्रू जो मैंने कैरेक्टर फिल्म्स बनाई हैं आपके अंदर कुछ कॉन्टेक्स्ट कुछ एम्पैथी जनरेट कर दी होगी इन कैरेक्टर्स के लिए तो हम एक सीन देखते हैं और मैं बस होप करता हूँ कि आपको वो सीन अब बेटर लगेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म जब हैरी मेट सेजल
हेलो इंडिया नमस्ते सलाम बनेरा ओ बचायो मेनू बोले सोने यार ससुरी अकाल नूरमाल कुलवंत कौर थोड़ी याद आती है यार
ये कौन है
थी नूर महल में जब मैं था वहां
जब ट्रैक्टर चलाते थे
आहो
ले जाते थे उसको खेतों में
सच्चा प्यार था अपना दो बारी मिले थे फिर उसने ब्याह करा लिया। पर कोई तो होना चाहिए ना याद करने को, तो उसी को याद कर लेता हूँ। पर बताता नहीं किसी को।
क्यों?
मर्दों वाला नाम है ना कुलवंत कौर, लोग ये ना समझे किसी मर्द को याद कर रहा हूँ। तेरा नाम ठीक है
सेजल, कैसी है यार?
ये सही।
सेजल याद आती है तेरी? आजा ना यार, फिर से कोई रिंग शिंग ढूंढ दे।
देखा ना वो सीन, कैसे हैरी जो घर ढूंढ रहा है उसको कैसे घर की याद आ रही है, कैसे हैरी के लिए घर वो इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है आपको समझ आ गया होगा। सेजल कैसे अपने आप से भाग रही है अपनी असली पर्सनालिटी से, बट इवेंचुअली उसे हैरी के थ्रू उसे अपना असली पर्सनालिटी दिख रहा है। ये फिल्म बहुत अच्छी है यार। मुझे बुरा लगता है बट ठीक है। अब अगर हम बाकी मूवी अगर कंटिन्यू करें तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा आर्क है। एक तो आप वो ट्रस्ट वाला आप आर्क देख सकते हो कि कैसे प्रीवियस सीन में जब वो गुंडे उसके पीछे पड़े थे तो शी डिड नॉट ट्रस्ट हैरी, बट इवेंचुअली जैसे वो गैस वाला सीन आया था उसमें शी ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा है। एक बहुत अच्छा आर्क है और एक्शंस हैं जो जस्टिफाई करते हैं उस आर्क को, क्योंकि अब कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास। तो इन दोनों कैरेक्टर्स का एक्चुअली आर्क बहुत रिफ्लेक्टिव है। ये बहुत मुश्किल चीज़ है जो इम्तियाज़ अली ने एक्चुअली अच्छे से की है। अच्छे से पता नहीं मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, बट मेरे लिए अच्छे से की है, अब होपफुली आपके लिए भी। इम्तियाज़ अली ने इन दोनों कैरेक्टर्स को एक रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी बनाई है। तो रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है, ये जनरली एक रोमांस जॉनर में यूज़ होती है। तो उसमें होता क्या है बेसिकली कि आप दो कैरेक्टर्स के थ्रू उनके रियलिटी उनको रियलाइज़ कराते हो। तो एक बहुत लिटरल सीन है इस फिल्म में, विच इज़ आफ्टर शी डिस्कवर्स कि शी ऑलवेज हैड द रिंग। बाय द वे मैं रिंग पे भी आता हूँ।
हो सकता है तुम अपना भी कुछ और इमेज लेके चल रहे हो। जो गलत है।
मुझे कभी कभी लगता तो मुझे बचा सकती।
इस सीन में वो बोलती है कि शायद तुम खुद को पहचानते ही नहीं हो, और हैरी बोलता है कि कभी कभी लगता है मुझे तुम बचा लोगी। मैंने इतना लिटरल और इतना सटल रिफ्लेक्टिव टेक्निक कभी अप्लाई होते हुए नहीं देखा है। बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग, बट शायद आप अप्रिशिएट कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास कॉन्टेक्स्ट है। दे हेल्प ईच अदर इन फाइंडिंग हु दे रियली आर, क्योंकि उन दोनों को चाहिए सेम चीज़ है। वो दोनों घर ढूंढ रहे हैं। हैरी इतनी जगह से भागा हुआ है, शायद उसे कभी उसका कोई घर नहीं मिला घर से भागने से। और शायद सेजल जो है उसको एक घर होने के बाद भी कभी एक्सेप्टेड क्योंकि फील नहीं हुआ। तो वो दोनों एक घर ढूंढ रहे हैं जो उन दोनों के अंदर ही है, और यही इस रिंग का सिम्बोलिज़म भी है। वो रिंग एक घर को ही सिंबलाइज करता है कि कैसे वो घर हमेशा उसके साथ ही था और उसे कभी रियलाइज नहीं हुआ।
मैं भी तो कुछ ढूंढ रहा हूं, हर वक्त हर एक में ढूंढ रहा हूं। पता नहीं क्या कुछ है जो कभी मिला नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम? सेजल
खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूं तेरा। खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूं तेरा।
क्या मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है ये? तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। मुझे नहीं पता अगर आप में से कोई एक भी ये फिल्म फिर से देख सकता है या देख लेता है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, और इस फिल्म को अप्रिशिएट कर पाता है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, तो मेरे लिए वो यार विक्ट्री होगी। मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिल्म मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। दुख होता है कि लोगों को ये उतनी पसंद नहीं आई, ओवरवेलमिंगली पसंद नहीं आई, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ इस फिल्म को एक बेटर प्रेजेंट करने के लिए, ये मेरा अटेम्प्ट है। मुझे नहीं पता कितना अच्छा है कितना बुरा। प्लीज़ मुझे बताना ये फॉर्मेट कैसा लगा आपको, कि मैं एक फिल्म ले रहा हूँ और उनके कैरेक्टर्स को हल्का सा ट्वीक करके, रीडिफाइन करके उस फिल्म को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ। प्लीज़ बताना ये, अगर आपको ये जो मैंने प्लॉट्स बताए वो भी पसंद नहीं आए बट आपको पसंद आया कि ये फॉर्मेट ठीक है, एटलीस्ट उतना बता देना, कम से कम मैं आगे ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने का। एनीवे, अगले हफ्ते मिलता हूँ। मुझे नहीं पता कि वीडियो बनाऊँगा मैं अगले हफ्ते या एक और पॉडकास्ट, बट कैसे भी अगले हफ्ते कुछ ना कुछ आ जाएगा आपके पास देखने को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। होपफुली यू वॉच दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी विजुअल। आई यूज्ड अ लॉट ऑफ सीन्स एंड अ लॉट ऑफ विजुअल इमेजरी टू जस्टिफाई माई सेल्फ बिकॉज आई एम नॉट द बेस्ट ऑफ कम्युनिकेटर्स। तो हाँ, ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय।